ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य है जिसमें बाबा कहते हैं कि कैसे हम बच्चों को अभ्यास करना है। एक है देही अभिमानी बनना, दूसरा है कर्मयोगी बनना। कर्म करते हुए देह को तो भूल नहीं सकते हैं, कर्मेंद्रिय का भी सपोर्ट लेना होता है, आधार लेना होता है। लेकिन कैसे देही अभिमानी स्थिति में रह करके, बाबा की याद में रह करके कर्मेंद्रिय का प्रयोग करना है। दूसरा, बाबा कहते हैं दुनिया में मनुष्य तो बहुत देह अभिमानी है। अब हम बच्चों को जब ज्ञान प्राप्त हुआ है तो जागृति आई है। आज की मुरली से पहले भी गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। तो बाबा कहते जागना कौन सा है? जागना है अर्थात जागृति लाना है। जागृति अर्थात हर कर्म करते हुए एक अटेंशन अंदर में बना रहे, ये जागृति लाना है। क्योंकि नई दुनिया में हमें जाना है, सतयुगी दुनिया में जाना है। देह अभिमान के कारण मनुष्य आज दुख का अनुभव करते हैं। सतयुग में नेचुरल देही अभिमानी होंगे, इसलिए वहां सुख का अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं ये दुख की दुनिया है, वो सुख की दुनिया है। क्यों ऐसा कहा? तो सतयुग के अंदर चारों प्रकार के सुख है, कलयुग के अंदर चारों ही प्रकार के दुख है, तन मन धन और जन। सतयुग में तन भी निरोगी स्वस्थ, मन भी प्रसन्न सदा खुशी वाला, धन आभूषण से तो इतना सजाया जाता है जो पता चलता है कितना सुख था उनको धन का भी, और जन तो वहां है ही सब अच्छे। और यहां चारों प्रकार के दुख है, तन भी स्वस्थ नहीं है, मन में भी परेशानियां टेंशन है, धन होते हुए भी भय बना रहता है, डर रहता है, छुपाना पड़ता है लोगों को। और कलयुग में जन तो है ही दुख देने वाले, कहीं ईर्ष्या है, कहीं द्वेष है, कहीं नफरत है, तो दुख देने का कार्य ही करते रहते हैं। तो तन मन धन जन चारों प्रकार से दुख है, इसीलिए इसको दुख की दुनिया, दुख धाम कहा जाता है। और सतयुग को कहेंगे सुख धाम। तो उसका आधार है संगम युग पर हमारी देही अभिमानी स्थिति, और इस स्थिति में रह करके हम वो संस्कार अपने अंदर भरते हैं जो सुख की दुनिया में सहजता से जा सके। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। अब नई दुनिया में जाना है तो पुरानी बातों को पकड़ करके मन में रखना नहीं है, पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर है, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी, देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता है। देह का आधार लेना है तो देह की स्मृति तो रहेगी, इसलिए अभ्यास करना है। कर्म किया, देह अभिमान में आए, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। देह का आधार लेने के लिए जो देह की स्मृति रहती उसको भी बाबा ने आज कहा वो भी देह अभिमान है, तो देह अभिमान में आए फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। गीत है आज की मुरली से पहले, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने यह गीत सुना, इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। ये गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई, जाग गई अर्थात स्मृति स्वरूप हो गए, स्मृति को जागृत कर लिया। तुम बच्चे अभी जाग गए अर्थात ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया है ना, जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है, जो कुछ भी बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्म की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। यह है नई दुनिया के लिए नई बातें, जो कुछ भी बाबा सुनाते हैं नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो, बाप बच्चों को धीरज देते हैं। हाँ, बाबा इस गीत के माध्यम से हम बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे अब नई दुनिया में चलना है, तो पुरानी बातों को भूल जाओ। नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। यह वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है ये सब खत्म होनी है, इसलिए सबको भूल जाओ, क्योंकि ये सब खत्म होनी है। या वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता है, कोई निशानी भी नहीं रहती है, कोई प्रकार का चिन्ह भी नहीं रहता है। वहां तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। हम बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से मालूम हो गई कि बाप कैसे आकर के बच्चों को भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ब्रह्मा बाबा को सबसे ज्यादा फल मिला, क्यों? सबसे ज्यादा भक्ति की है। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, जितने भी बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं जरूर है, द्वापर से लेकर के बहुत भक्ति की है, जरूर ज्ञान में भी वह तीखे जाएंगे। तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा उच्च पद पाएंगे, तब बाबा कहे लक्ष्मी नारायण जैसा उच्च पद पाएंगे। कई लोग समझते हैं कि ज्ञान सुनाते हुए हम एकदम स्पष्ट कर दे, लेकिन सारा समझाने के बाद भी वो नहीं चल पाता है, क्यों नहीं चल पाता है? तो उसका उत्तर आज बाबा ने दिया कि उसका पार्ट ही इतना है, उसने भक्ति नहीं किया ज्यादा तो पुरुषार्थ भी कैसे करेगा। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है, हमारा पुरुषार्थ है ये ज्ञान और योग के लिए। देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है, कर्म करते हुए बाप को याद करना है, देह बिगर तो हम कर्म कर न सके। ये तो ठीक है, बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे, देह को भुला देने से काम नहीं होगा। बाबा कहते खाली आत्मा समझ करके देह को भुला देने से काम नहीं होगा, तो किससे काम होगा? क्योंकि बाबा कहे तुम कर्म योगी हो, संसार में रहना है, सन्यासी तो नहीं बन जाना है, कर्म तो करना ही है। तो बाबा कहते कर्म करते हुए बाप को याद करना है, देह बिगर तो हम कर्म कर न सके। ये तो ठीक है, बाबा को याद करना है, परंतु कैसे? बाबा को याद करना है परंतु कैसे? अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद। बाबा को याद करना है परंतु अपने को आत्मा समझे, देह को भुला देने से काम नहीं होगा, कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मजा है, सुना? जितना बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा कहते बहुत मजा है, उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ना, इसलिए कर्म तो करना पड़ता है। देही अभिमानी हो रहना है, देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी है नहीं। कर्म करना है तो देही अभिमानी होकर के कर्म करना है, भल अपने को आत्मा भी समझे परंतु परमात्मा का परिचय नहीं है। दुनिया में मनुष्य आत्म ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आत्मा को तो समझ लेते परंतु परमात्मा का ज्ञान नहीं है। भल समझे हम आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इतना समझ लिया कि मैं आत्मा इस देह में हूँ, इतना समझने से कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। कहते भी है पुण्य आत्मा पाप आत्मा पतित आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर है, यह तो कॉमन बात है, हम आत्मा है, ये शरीर है, ये तो कॉमन बात है। मूल बात बाप समझाते हैं, कौन सी है मूल बात? कौन सी है मूल बात? बाप को याद करो, तो मूल बात बाप समझाते कि मुझे याद करो। शरीर निर्वा अर्थ देह अभिमान में तो आना है, देह को खिलाना भी है, देह बिगर तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आए हो, कर्म करते हुए भी अपने माशुक को याद रखना है। उस माशुक का किसी को भी पूरा पता नहीं है, दुनिया के अंदर किसी को भी माशुक का पूरा पता कहीं नहीं, ज्ञान है ही नहीं। उस माशुक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलता है और उनकी याद से विकर्म विनाश होगा, ये कोई नहीं समझते। ये बातें कोई नहीं समझते कि उनसे वर्षा मिलता है, विकर्म विनाश होते हैं, कोई नहीं जानते। तुम बच्चे अभी नई बातें सुनते हो, तुम जानते हो अभी हमें घर जाने का रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आना है, पहले तो यहाँ से घर जाएंगे, घर जाके फिर राजधानी में भी आना है। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर के बैठते हैं ना। दुनिया में भी कोई नया मकान बनाता तो जरूर दिल होती है कि नए मकान में जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। किसने भी यज्ञ तप आदि करते हैं, बाबा कहते कितने भी यज्ञ तप आदि करते हैं, माथा फोड़ते रहते हैं, सदगति को पा नहीं सकते। कायदा नहीं है कि बिना बाप के सदगति को कोई पा सके। तो कितने भी यज्ञ तप आदि करते हैं, माथा फोड़ते रहते हैं, सदगति को पा नहीं सकते, इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते। कोई बिना ज्ञान के, बिना बाबा की याद के जा नहीं सकते। यह भी समझना चाहिए, शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। कौन सी बात समझ सकते हैं? बाबा कहते तुम अच्छी रीति समझ सकते हो, कल की ही तो बात है, कल की तो बात है, कल हम कहाँ थे, आज कहाँ है और फिर कल कहाँ होंगे। भारत तो स्वर्ग था, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता है, भारत जैसा सुख कोई भी नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता है? बाबा की बात सुनाना, भारत जैसा सुख कोई भी नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता है? भारत में ही भगवान आते हैं और अविनाशी बाप भारत में आते हैं, इसीलिए भारत भी अविनाशी है। सुख दाता यहाँ आते हैं तो सुख सारा यहीं लुटा देते हैं, तो दूसरे कोई देश में, दूसरे कोई खंड में वो सुख नहीं जो स्वर्गीय सुख यहाँ हमने भारत में पाया है। भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता है। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा ना सके, जा ही नहीं सकते तो कैसे पा सकते। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके, कितना भी प्रयत्न करे धन खर्च करे फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह मिल न सके। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, धन होगा तो स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य होगा तो धन नहीं है। दुनिया में भी देखते हैं हेल्दी लोग होते हैं लेकिन उनके पास धन की कमी होती है, और जिनके पास बहुत धन है उनका तन हमेशा बीमार चलता रहता है, कुछ न कुछ होता रहता है। तो इसीलिए बाबा कहे किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी और किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। यह है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, हे आत्माएं जागो, उस दुनिया में चलना है तो जागो। तुमको जागना माना अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तीसरा नेत्र हमारा खुल गया है। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया को, सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी जानते हो, कितनी जागृति आई है। वो कहीं कहानी बहुत एक अच्छी है कि एक बार एक गुरु को कहीं जाना था हिमालय में, तो उसने अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि मैं 6-8 महीना जाऊंगा तो पीछे से आश्रम की देखभाल तुम करना। तो कहा जरूर करूंगा, आप भले निश्चिंत होकर के जाओ। तो गुरु ने कहा देखो मैं परसों सुबह सुबह निकल जाऊंगा, कल का दिन है, तुमको अगर कुछ भी ये आश्रम के कारोबार के विषय में पूछना हो तो कल मुझे पूछ सकता है, परसों सुबह सुबह चला जाओ। तो रात में तो दोनों सो गए, सुबह उठे तो शिष्य को लगा चलो मैं गुरुजी से पूछ तो लूं। तो उसको पता था कि भई ये गुरुवार का दिन है तो गुरुजी का तो मौन रहता है तो कैसे पूछूं। तो गया गुरुजी के पास कि गुरुजी आज आपका मौन है, बोले हाँ है, इशारा किया। तो कहा कि फिर मैं पूछूंगा तो जवाब कैसे देंगे, बोले लिख करके दे दूंगा, पूछो। तो उसने गुरुजी से पूछा कि आपकी एब्सेंस में मुझे किस बात का ध्यान रखना होगा। गुरुजी का तो मौन था तो एक कागज कलम लिया और उसके ऊपर एक शब्द लिख दिया जागृति, शिष्य को दे दिया, उसने पढ़ा जागृति, बस इतना ही करना है। ये तो सहज है, करके बाहर निकल गया कुटिया के, लेकिन बार बार वो कागज देखे तो कंफ्यूज होने लगा, गुरुजी ने और कुछ लिखा ही नहीं, जागृति बस, कुछ तो लिखते थे भाई, किस बात की जागृति, कौन सी जागृति। बहुत कंफ्यूज हो गया वो देख देख करके। फिर गुरुजी के पास आया, गुरुजी आपने कुछ आगे कुछ पीछे भी तो लिख दिया होता था। तो गुरुजी ने फिर वही कागज लिया, उसके हाथ से एक शब्द आगे जोड़ दिया, एक शब्द पीछे जोड़ दिया, आगे जो शब्द जोड़ा वो भी जागृति, पीछे जो शब्द जोड़ा वो भी जागृति, जागृति जागृति जागृति। शिष्य को दिया, जब उसने देखा अच्छा जागृत रहना है, मतलब मुझे सारा समय जागृत रहना है, गुरु जी का मतलब ये है कि मुझे हर वक्त जागृत रहना होगा। सहज है ये तो, करके बाहर निकला कुटिया से, लेकिन जितनी बार वो कागज उठाकर देखे जागृति जागृति जागृति, 3 बार तो लिख दिया, लेकिन और कुछ लिखा ही नहीं गुरु जी ने। जितनी बार देखे उतनी बार कंफ्यूज हो जाए, वो उसका कंफ्यूजन बढ़ता जाए। आखिर उसको बड़ा गुस्सा अंदर से आ रहा था, वो फिर से गुरु जी के पास गए और कहने लगा, गुरु जी ये जागृति 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 इज इक्वल टू व्हाट। गुरु जी का मौन था, फिर से वही कागज लिया और जागृति 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 इज इक्वल टू जागृति। मैसेज बहुत क्लियर था, लेकिन वो शिष्य की क्षमता नहीं थी समझने में। मैसेज ये था कि तुम जब इतना रिस्पॉन्सिबल कारोबार को संभाल रहा हो, आश्रम की देखभाल संभाल रहा हो, इतना रिस्पॉन्सिबल कार्य हो, तो तुम्हें अपने विचारों के प्रति जागृत रहना चाहिए कि मेरे विचारों की क्वालिटी क्या है। तुम जब मुख से कुछ बोलेगा तो तुम्हें अपने वचनों के प्रति जागृत रहना चाहिए कि मेरे मुख से कोई अयोग्य शब्द तो नहीं निकल रहा है। तुम्हें अपने व्यवहार के प्रति जागृत रहना चाहिए कि जब तुम किसी के साथ भी संबंध संपर्क में आते हो, व्यवहार में आते हो, तो तुम्हारा व्यवहार कैसा है उसके प्रति जागृति चाहिए। तुम जो कर्म करता है उसके प्रति जागृति चाहिए, क्योंकि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख बहुत लोग करेंगे। तो कहां जागृति नहीं चाहिए? संकल्पों के प्रति जागृति, वचन के प्रति जागृति, वाणी के प्रति जागृति, कर्म के प्रति जागृति, व्यवहार के प्रति जागृति, हर प्रकार की जागृति चाहिए, वृत्ति की जागृति चाहिए कि मेरी वृत्ति कैसी है, दृष्टि के प्रति जागृति चाहिए मेरी दृष्टि कैसी है। इसीलिए एक शब्द के अंदर गुरुजी ने बहुत कुछ बता दिया कि जागृति 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 इज इक्वल टू जागृति। भावार्थ ये कि बाबा ने भी हम बच्चों को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इस संसार को परिवर्तन करने की, तो हमें तो अपने मन बुद्धि संस्कारों के प्रति भी जागृति चाहिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर भी जागृति चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जाग सजनिया जाग मना, जब तीसरा नेत्र खुला है तो जागृति चाहिए। ये बाबा का भाव है, कितनी गहरी समझ बाबा हम बच्चों को देना चाहते हैं कि अब तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें मिला है तो कितनी जागृति आई है। देखो अपने आप में कहीं हम गफलत तो नहीं कर रहे हैं। भाव ये है, साधारण रीति से चलते हुए गफलत तो नहीं हो रही है। जागृति, उठते बैठते चलते फिरते कर्म करते जागृति है, क्योंकि हम सोचते हमें तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सारा संसार के अंदर हर समय कोई न कोई तो मुझे जरूर देख रहा है, किसी न किसी की दृष्टि मेरे तरफ है ही है। तो कितनी जागृति चाहिए? तो बाबा पूछते हैं, देखो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है तो कितनी जागृति आई है? आई है कि गफलत होती रहे, गफलत होती है, गलती होती है, फिर हम सोचते कल से ठीक कर लेंगे, कल से ठीक कर लेंगे। नहीं, तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो, बाप जानी जाननहार है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबके दिलों को जानता हूं। जानी जाननहार हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके दिलों को जानता हूं। तो फिर ये टाइटल क्यों मिला बाबा को, जानी जाननहार? क्या जानता है, क्या जानता है, क्या जानता है? आदि मध्य अंत को जानता है, अर्थात 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 भगवान समय को बहुत अच्छे से जानता है, आदि मध्य अंत के समय को जानता है, दिलों को नहीं जानता है। वो जानने की जरूरत नहीं, जानना चाहे तो जान सकता है लेकिन जरूरत नहीं। तो भगवान क्या जानता है? भगवान समय को बहुत अच्छे से जानता है, ये समय कौन सा चल रहा है और आने वाला समय कौन सा है, अब कितना समय बचा है वो भी जानता है। इसीलिए जागृत कर रहे हैं, क्योंकि वो समय को जानता है। इसलिए बाबा बार बार समय को जानते हैं, इसीलिए हमें जागृत करते हैं। बच्चे, अब समय बहुत कम रहा है तो गफलत नहीं होनी चाहिए। तो कितनी सुंदर गहरी बात बाबा सुनाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके दिलों को जानता है, ये कौन है, कितना समझाते हैं, ये कहां तक पवित्र रहते हैं, बाबा तो जानता है, ये जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जानता है कौन है, कितना समझाते हैं, कितना पवित्र रहते हैं, कहां तक बाबा को याद करते हैं। मैं हर एक का ये ख्याल क्यों बैठ करूं, जानता हूं लेकिन फिर भी मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं उसमें। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है, इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है, देही अभिमानी जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो, देवताओं को तो शंख आदि है नहीं, ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है, ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। हमारे चार सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा, और चार अलंकार है। कौन से सब्जेक्ट से कौन सा अलंकार मिलता है? ज्ञान से शंख पक्का, योग से चक्र, धारणा से कमल पुष्प, और सेवा से, सेवा गदा तो नहीं है, अभी बाबा ने क्या बताया, शंख बजाना है ना, चार सब्जेक्ट है, चार अलंकार है। कौन से सब्जेक्ट में पास होना है तो कौन सा अलंकार धारण कर सकते हैं? ज्ञान का शंख, योग का चक्र, धारणा कमल पुष्प, ज्ञान, ज्ञान की गदा, ज्ञान की गदा, योग का चक्र, धारणा कमल पुष्प, और सेवा शंख। सेवा का शंख बजाना है, सबको संदेश देना है ना, और ज्ञान की गदा है। जब कोई भी ऐसी परीक्षा आए जीवन में तो ज्ञान की गदा को यूज करना है, और ज्ञान की गदा से परिस्थिति पर हर बात में विजयी होना है। तो ज्ञान की गदा, योग का चक्र, धारणा का पुष्प कमल पुष्प और सेवा का शंख, शंख बजाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। बड़ी सभा जब होती है तो लाउड स्पीकर लगाते हैं। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है, दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे स्कूल में तो लाउड स्पीकर लगाएंगे। यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए। जब सेवा करने जाते हैं तो उस समय भाषण अगर रखा तो भी लाउड स्पीकर रखेंगे ताकि आवाज दूर दूर तक जाए, वह भी आगे चल काम में आएगा। लाउड स्पीकर आदि आगे चल बहुत काम में आएगा। तुमको सुनाना यह है, क्या सुनाना है लाउड स्पीकर पर, क्या सुनाना है? भगवान आ चुका है और क्या सुनाएंगे? बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, तुम्हें सुनाना यह है कि मौत सामने है, समझा? तुम्हें यह सुनाना है कि मौत सामने है। अभी तो सुनाने की भी जरूरत नहीं, हर कोई देख सकता है, प्रैक्टिकल महसूस कर सकता है। अभी मौत सामने है, अभी सबको वापस जाना है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, यहाँ तो रहेंगे कुछ लोग विनाश के समय भी, खाली तो होता नहीं है। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं है। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सदगति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है, क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है ना, इसलिए याद आती है। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई मरता है तो चाहते इनको अपनी जन्मभूमि में ले जाए। यह अगर सबको पता होता कि भारत सर्व का सदगति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाला शिव बाबा का बर्थ प्लेस है तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाए, अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है उनका नाम निशान ही गुम कर दिया है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ भी करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे, दुख से लिबरेट करके बाबा क्या करेंगे? तुम जानते हो शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग है। यह तो है ही दुख धाम, सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहां 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा, कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नामी है सुख धाम, कितना मीठा नाम है और रसनाती है। बाप कहते तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। अपने को आत्म समझना है, यह ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, हम आत्मा है, यह शरीर छोड़ जाकर दूसरा जन्म लेंगे, इतना ही ज्ञान है। लेकिन उसी को कहा जाता है आत्म अभिमानी। तो बाबा कहते सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे, इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। इसलिए देवताएं आत्म अभिमानी थे, इतना ही ज्ञान था। यह है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे न सके। रूहों को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं, हर 5000 वर्ष बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, अब तुमको रोशनी मिली है। तुम अज्ञान नींद से जागे हो, सभी सजनिया का साजन है एक बाप। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सर्व गुरुओं का सदगति दाता एक ही सदगुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व की सदगति करता हूँ, गति के बाद सदगति होती है। बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापस जाना है। अब समय आ गया हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है, सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए, इतना ही पार्ट है। जैसे मच्छरों मुआफिक जन्मे और मरे, सोचो वो आत्मा कैसी होगी, कितनी कम भाग्यशाली होगी, परमधाम से आई और चली गई वापस, इतना ही पार्ट है, इतना ही पार्ट है। ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते हैं, बाप से वर्षा लिया जाता है कौन सा, पवित्रता सुख शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं, बाप तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते हैं, कितना दूर दूर जाते हैं, है ना, अमरनाथ का मंदिर कितना पैदल लोग जाते हैं, मानसरोवर पैदल जाते रहते हैं, तीर्थों पर मेलों पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या, इतना बेचारा पैदल 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 जाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट को भी उनके लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं, तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चे को कैसे ले जाएंगे, हम मानसरोवर की यात्रा पर जाएंगे, छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे, तो बच्चों आदि को कोई न कोई संभालने के लिए दे जाते हैं, किसी न किसी को देके जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते हैं, 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है, छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे, इसलिए मधुबन में भी आते हैं तो बच्चों को लेके जो आते हैं तो फिर उनको सुनने में भी तकलीफ होती रहती है। यहाँ तुम आए ही हो ज्ञान और योग सीखने, बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है कि बाबा हमको क्या कहते हैं। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो बुद्धि का योग वहां लगा रहे। बाबा की याद रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। तुम जानते हो मेवर हेल्दी बनेंगे अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथों से बनाना है। हाथों का काम भी करो बाकी याद करो अपने बाप को। तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज अच्छी भी बनेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम यहाँ आते ही हो किस लिए? लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हम सूर्यवंशी बनेंगे। है कोई चंद्रवंशी बनने वाला? नहीं है, सब सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती है, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है, खाली लक्ष्मी नारायण का पता, बाकी किसका पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर बना क्या पता, अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है, बाबा के इस समय तुम्हें पता पड़ता है। अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती, वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा इनके बच्चे भी साथ हैं, वह भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगत अम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिए हैं। क्या नाम रख दिया? जगत अम्बा का कन्या कुमारी, अदर कुमारी। तुम जानते हो यह हम ही बनते हैं, कन्या कुमारी या अदर कुमारी, बाबा के सारी माताएं बहने ही है। हम सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, एक बाप के बच्चे हैं। तुम्हारा ही यादगार है, बरोबर तुम बैठ ये नॉलेज देते हो। अर्थ सहित ये दिलवाड़ा मंदिर है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। ज्ञान शंख भी बजाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है महान और मेहमान। इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। विस्तार। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूं, दूसरा मैं आत्मा पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव के आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तन हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य बन जाएंगे। महान और मेहमान समझने से महिमा योग्य बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। आज का व्यक्ति इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते पावरफुल मन की निशानी है। पावरफुल मन किसको कहा जाता? सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ तो याद शक्तिशाली बन जाएगी। ओम शांति।